ओम शांति। तो अब तक हमने राजयोग के जो तीन कदम हैं, दो कदम पूरे किए। पहला कदम आत्मा को जानना, दूसरा कदम परमात्मा को जानना, और आज तीसरा कदम है आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन एस्टैब्लिश करना, या आत्मा परमात्मा के मिलन की अनुभूति करना। यह है आज का तीसरा कदम। तो आत्मा को हम सब ने अच्छे से समझ लिया, प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि सुन लेने के बाद, समझ लेने के बाद उसे प्रैक्टिकल में उतारना होता है, क्योंकि लंबे समय का अभ्यास है बॉडी कॉन्शियस में रहने का, और अचानक से एक नई दिशा मिली कि बॉडी कॉन्शियस ही हमारे बैटरी को डिस्चार्ज कर रही है, और बैटरी डिस्चार्ज की क्या हालत हुई वो सबको पता है। जब बैटरी अबाउट टू कंप्लीट डिस्चार्ज होती है ना, तो बहुत बहुत हार्मफुल रेडिएशंस निकलते हैं। इसलिए वार्निंग दी जाती है कि कभी भी बैटरी को कंप्लीट डिस्चार्ज होने का वेट मत कीजिए, उससे पहले ही उसे चार्जिंग पर रख दीजिए। क्योंकि क्या होता है, जब बैटरी यूज करना आरंभ करते हैं आफ्टर 50% डिस्चार्ज, हार्मफुल रेडिएशन निकलना आरंभ होता है। इनिशियली लेस क्वांटिटी, पर जैसे जैसे बैटरी और डिस्चार्ज होगी, हार्मफुल रेडिएशन की क्वांटिटी बढ़ती जाएगी, और अबाउट टू डिस्चार्ज वाली कंडीशन में तो बहुत बहुत होते हैं। ठीक ऐसे ही आज हमको शिकायत है सबको, निगेटिविटी से पीछा नहीं छूट रहा है, वेस्ट से पीछा नहीं छूट रहा है। यह बहुत बड़ा इंडिकेशन है कि हमारी बैटरी, आत्मरूपी बैटरी, अबाउट टू डिस्चार्ज है। और इसलिए पहला कदम है कि आत्मा को समझ लिया, अब सोल कॉन्शियस होकर हम सोचें, बोले और व्यवहार करें। मन, वचन, कर्म, ये तीन बातें कही जाती है। मन से सोचा जाता है, वचन माना ही बोल, कर्म माना ही व्यवहार में आते हैं, कर्म होते हैं। इन तीनों के समय मेरा अटेंशन रहे कि मैं सोल कॉन्शियस हूं या नहीं, क्योंकि दो ही ऑप्शन है, क्योंकि जीवन दो से बना है, एक शरीर और एक आत्मा, बॉडी और सोल। तो मेरा स्विच या इधर का चालू होता है तो एक स्विच ऑन एक ऑफ होता है, या तो हम बॉडी कॉन्शियस होंगे या तो हम सोल कॉन्शियस होंगे। अब तक हमारे जीवन में सोल की इतनी जानकारी नहीं थी, जागृति नहीं थी, तो हम बॉडी कॉन्शियस ही होकर जी रहे थे, और अब चूंकि सोल की जागृति हुई है तो अब मुझे सोल कॉन्शियस होकर जीना है, ये पता चला है। और पता चलने के बाद प्रैक्टिस करना है। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि पता चल गया और प्रैक्टिस में 100% परफेक्ट उतरूंगी, नहीं। बच्चा भी जब चलना सीखता है तो एकदम से सीख जाता है, गिरता है संभलता है, गिरता है संभलता है, ऐसे ही करता है ना? यहाँ पर भी एक बार समझ आ गई कि अब मैंने सोल कॉन्शियस होकर जीना है। मैं थोड़ा अटेंशन दूंगी भी, लेकिन कब यह अटेंशन फिसल जाएगा पता ही नहीं चलेगा। बॉडी कॉन्शियस में हम फिर आ जाएंगे तो हम झूला झूलते रहते हैं, बॉडी कॉन्शियस और सोल कॉन्शियस का। बगीचे में बच्चे खेलते सीसा का वो खेल होता है, देखा है, वो बेंच होता है, नीचे ऊपर, एक नीचे एक ऊपर, तो एक नीचे जाता है एक ऊपर जाता है, एक नीचे जाता है एक ऊपर जाता है। तो ऐसे ही कभी बॉडी कॉन्शियस होते हैं हम, कभी सोल कॉन्शियस होते हैं। लेकिन प्रैक्टिस बढ़ानी है कि सोल कॉन्शियस की परसेंटेज धीरे धीरे बढ़ती जाए। क्यों? क्योंकि जो हमें कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है इसके अंदर भी तीन स्टेप है, और जिसमें सबसे पहले स्टेप है सोल कॉन्शियस होना। और सोल कॉन्शियस होने का मतलब है आत्म चिंतन करना। और फिर दूसरी स्टेप होती है परमात्म चिंतन करना, और इसी चिंतन के माध्यम से हम कनेक्ट होते हैं। और चिंतन के लिए क्या काम आता है? मन। मन से चिंतन करते हैं भाई, थॉट क्रिएट करना माना चिंतन क्रिएट करना। और बुद्धि क्या करती है? फिर विजुअलाइज करती है। अभी बैठे बैठे हम कहें आप अपने घर का विजिटिंग रूम देखो, दिखेगा नहीं दिखेगा? तो इन आंखों से देखा या बुद्धि रूपी नेत्र से देखा? बुद्धि रूपी नेत्र से देखा। तो जैसे हम कह रहे थे ना कि जिस बैटरी ने चार्ज होना है उसकी समझ होना चाहिए, और उस बैटरी को जहां से पावर सप्लाई होनी है उस परमात्मा की समझ होनी चाहिए, और फिर कनेक्टर चाहिए कि कनेक्टर का एक छोर बैटरी को लगेगा, दूसरा छोर पावर सप्लाई को लगेगा। तो इसलिए कहा पहले मन और बुद्धि को आत्मा पर फोकस करना होता है। ये है मैंने मन बुद्धि रूपी तार को आत्मा रूपी बैटरी में कनेक्ट किया, और जब ये प्रॉपर कनेक्ट हो जाती है फिर दूसरा छोर माना मन बुद्धि का दूसरा छोर परमात्मा पर टिका देते हैं, परमात्मा चिंतन करते हैं। और जब प्रॉपर फोकस कॉन्सेंट्रेटेड कनेक्शन हो जाता है तो पावर सप्लाई बैटरी की ओर आने लगती है और बैटरी चार्ज होती है। तो कई बार लोग जब ऐसा अभ्यास करते हैं तो कहते क्या पता चलेगा कि वहां से पावर आ रही है। तो इसके भी कुछ उदाहरण हम आपको देंगे, लेकिन उससे पहले कि कैसे आत्मचिंतन की ओर कदम बढ़ाना है और कैसे परमात्म चिंतन की ओर कदम बढ़ाना है, इसको थोड़ा विस्तार में लेते हैं। और हमारे परमात्मा तो बहुत अच्छी बात कहते हैं कि आज विज्ञान ने इतनी तरक्की की है, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, इतने गैजेट्स आ गए हैं कि उनके द्वारा सूक्ष्म बातों को समझना इजी हो गया है। नहीं, जैसे अभी मोबाइल का एग्जाम्पल देंगे आत्मा परमात्मा का कनेक्शन कैसा होता है, इजीली समझ में आता है ना। ऐसे ही और एक उदाहरण है कि जैसे आत्मचिंतन करना है माना ही मुझे देह से क्या करना पड़ेगा, डिटैच होना पड़ेगा। चित्र में दिखाया ना कि एक छोटा बच्चा अपने पिता को याद करता है, कल एग्जाम्पल दिया था हमने। मनुष्य का बच्चा गुजरेगा तो उसके माता पिता की कल्पना मनुष्य के रूप में, तो तो हम मनुष्य रूप में देखते थे तो मनुष्य रूप में पिता को याद करते थे। अभी अपने आप को किस रूप में देख रहे हो? रूह, पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति। तो ज्योति का पिता, पॉइंट ऑफ लाइट आत्मा, ज्योति का पिता परम ज्योति। तो अब ये आत्मा किसको याद करेगी? परम ज्योति को याद करेगी। और इसलिए इस चित्र में दिखाया है ऊपर में वही बात, और नीचे क्या दिखाया है? नीचे दिखाया है अलग अलग जो भाव हमारे मन में आते हैं ना, काम के, क्रोध के, लोभ के, मोह के, अहंकार के, ये सब नहीं चलेंगे यहाँ पे। राजयोग में इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। पूजा पद्धति करते थे, माला फेरते थे, आरती करते थे, फिर भी वो जो सुकून मिलना चाहिए वो नहीं मिलता था। उसका कारण क्या था पता है? उसका कारण यही था कि हाथों से आरती फेर रहे हैं थाली, मुख से आरती का वर्णन हो रहा है, पर मन में वही गुस्सा, मेरी बहू कितनी ये है, मुझे तो उस पर गुस्सा था, कल उसने ऐसा किया था। तो ये सारी बातें इसमें क्रॉस दिखाई गई है। ये जो भी भाव आते, इससे किसी भी भाव की जरूरत नहीं है जब हम आत्मा परमात्मा का कनेक्शन एस्टैब्लिश करेंगे। क्योंकि पहले ही हमें पता चल गया है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार ये निगेटिविटी है, और वो तब आती है जब बॉडी कॉन्शियसनेस होती है। तो बॉडी कॉन्शियसनेस का हिस्सा है, और कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए सोल कॉन्शियस होना है। तो सबसे क्या हो जाना है? मुझे डिटैच हो जाना है। तो कई बार हम देखते हैं बचपन में कि घर के अंदर हम रहते हैं और बाहर एक बालकनी भी होती है कई बार घरों में, बंबई जैसे शहरों में हो ना हो, फ्लैट सिस्टम में कई बार इन सब चीजों का अभाव होता है, लेकिन आप गांव में जाएंगे तो आज भी बड़े बड़े घर मिल जाते हैं और अच्छी खासी खुली बालकनी होती है। और बचपन में हमेशा बच्चे क्या करते हैं समझो नहीं, जैसे भी जन्माष्टमी आएगी, गणेश का पर्व आएगा, नवरात्रि आएगी, तो देवियों का स्थापन करते हैं। जहाँ जहाँ मंडप स्थापित होते हैं तो जहाँ मूर्तिकार मूर्ति बनाया है वहाँ से मंडप तक लाना एक पूरा जुलूस निकलता है। और अगर हमारे घर के पास से गुजरता हो, वो बैंड बाजों की आवाज आती है, क्या करते हम लोग? बालकनी में खड़े हो जाते कि सारा दृश्य हम देखेंगे। और सिर्फ उन दिनों में नहीं, बच्चे तो आम दिनों में भी बाहर जाके खड़े हो जाते हैं। और भीतर से, क्योंकि बाहर जाके खड़ा हो गया तो ये आंखें बाहर वालों को देख रही जो वहां से गुजर रहा है, वहां जो आवाजें आ रही है कानें उनको सुन रही है, और कई बार तो चलने वाले राहगीर से बच्चा बात भी कर लेता है, कर लेता है कि नहीं कर लेता है। और ऐसे में क्या होता है, जो घर के भीतर घर के सदस्य बैठे हैं, माता कहो, पिता कहो, भाई कहो, बहन कहो, जो भी, उसको आवाज देते हैं पर उसको सुनाई नहीं देती है, क्योंकि कंप्लीटली उसका माइंड एंड इंटेलेक्ट बाह्य दुनिया में है। तो इतनी सारी आवाज लगा रहे पर उसको कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। लेकिन वो देख देख के जब पूरा हो गया, अब सोचता है चलो भूख लगी है, खाना खाएंगे, जाता है, मम्मी भूख लगी है, मम्मी कहती बेटा मैं तेरे को कब से आवाज दे रही हूं, तुमने मेरे को आवाज दिया? मम्मी मुझे कुछ भी नहीं सुनाई दिया। लेकिन अंदर जाने के बाद मम्मी बोल रही है, सुनाई दे रहा है, मम्मी दिख भी रही है, मम्मी से बात भी हो रही है। लेकिन अंदर जाने के लिए क्या करना पड़ा? देखो ये मेरा घर है, सपोज मैं बैठी हूं, ये घर है, जो कुर्सी है समझो मेरा घर है, ये टेबल मेरे घर की बालकनी है, दहलीज है, और टेबल के उस पार सड़क में लोग आ रहे जा रहे हैं, बाहर की दुनिया, ये अंदर की दुनिया वो बाहर की दुनिया, और इन दोनों को जोड़ने वाली ये बालकनी, ये दहलीज। अब बच्चा घर के अंदर से यहां खड़ा हो गया और उसका मुख बाहर की दुनिया की तरफ, तो बाहर का सुन रहा है, बाहर का देख रहा है, बाहर वालों से बात कर रहा है, और चूंकि उसमें मगन है, माइंड एंड इंटेलेक्ट वहां लगे हुए, भीतर के वालों को देख भी नहीं सकता, आवाज लगाएगी सुनाई भी नहीं पड़ेगी और उनसे बात भी नहीं कर पाएगा। लेकिन वो उनसे कब कर पाएगा, जब यहां से यू टर्न लेगा, है ना, ऐसे देख रहा है, यू टर्न ऐसा लेना पड़ेगा ना, फेस इस तरफ करना पड़ेगा ना, और जैसे इस तरफ करेगा और आगे बढ़ेगा तो घर के सदस्य दिखेंगे भी, उनकी आवाजें भी सुनेंगे और उनसे बातें भी करेंगे। इसी को कहा जाता है, जब कभी भी यहाँ पे अभ्यास कराया जाता है तो वो जो अभ्यास शुरू होता है ना, कैसे शुरू होता है, सब तरफ से अपना ध्यान हटाकर, पहली लाइन ऐसे बोलते हैं ना, उसका भाव ये होता है कि बाह्य दुनिया में जो बच्चा देख रहा था वो बच्चा आप क्या करे, वहां से ध्यान हटाए, यू टर्न लेके भीतर आए। तो यहां पर भी बाहर में इंद्रियां हैं, इंद्रियों के द्वारा बाह्य दुनिया से कनेक्ट है हम, अब यहां से और मन बुद्धि इनके साथ अटैच है, बिना मन, अगर मन मन आंख के साथ अटैच नहीं हो तो मैं भले ऐसे देख रही हूं तो आपका भ्रम होगा कि मैं आपको देख रही हूं, क्योंकि मन मेरा यहां नहीं है, बुद्धि मेरी यहां नहीं है, मेरे ख्यालों में कोई और है, पर यूं देख रही हूं सामने तो आपको लग रहा है मैं आपको देख रही, पर आपको नहीं देख रही, होता है ना ऐसा। तो ऐसे ही कि मन बुद्धि को वहां से खींच लेना है, जो कहा कि बच्चे को कहा यू टर्न लो, अर्थात ये माइंड एंड इंटेलेक्ट, माइंड बच्चा ही है ना, माइंड बच्चा है, इस माइंड को यू टर्न देके भीतर ले चलो, और भीतर ले चले तो भीतर में कौन बैठी है, आत्मा बैठी है, पॉइंट ऑफ लाइट, ज्योति स्वरूप, सतोगुणी, शांति जिसका स्वधर्म, प्रेम जिसकी निजी संपत्ति, तो वहां पर फोकस करें, तो मन चिंतन करे और बुद्धि उसको विजुअलाइज करे। इसको कहते हैं बाहर से डिटैच होके अंतरात्मा से अटैच हो जाना। दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू एस्टैब्लिश कनेक्शन। तार को जोड़ना पड़ेगा ना, जिस बैटरी को चार्ज होना है तो पहले उधर तार को जोड़ते हैं, और ये तार जोड़ने में इतने फटाफट नहीं होगा, मन तो यूं भागने की कोशिश करेगा, फिर बालकनी में चला जाएगा। तो मैं इसको और ज्यादा क्लियर करने के लिए एक दूसरा उदाहरण दूंगी, और वो उदाहरण है, आजकल फ्लाइट में सफर तो सभी ने किया ही होगा, कभी ना कभी किया होगा ना सभी ने, तो हमें भी जब फ्लाइट से सफर करना होता है तो जहां भी हम रहते हैं वहां से एयरपोर्ट पहुंचना होता है। एयरपोर्ट में हम सीधे नहीं पहुंचते, पहले टर्मिनल में पहुंचना होता है। पहले कहां पहुंचना होता है, टर्मिनल, और टर्मिनल माना क्या होता है, वो बिल्डिंग जहां पर चेक इन होगा, सिक्योरिटी चेक होगा, जहां बहुत सारी दुकानें होंगी, जहां खरीदारी कर सको, अभी काफी टाइम है ना, चलो खरीदारी कर लेते, माना रंगीली दुनिया है वहां पे। लेकिन वो सब पूरा क्रॉस करने के बाद आपको जाना पड़ेगा बोर्डिंग एरिया में, गेट एरिया में, और जैसे उनका टाइम होगा वो आपको बुलाएंगे या अनाउंसमेंट होगी और आप उनको बोर्डिंग पास दिखाकर उस बोर्डिंग गेट से बाहर निकल जाएंगे। रंगीली दुनिया से कट ऑफ हो गए आप। आप क्या हो गए? रंगीली दुनिया से कट ऑफ हो गए। और फिर वहां पे टैक्सी आएगी जो आपको कहां तक पहुंचा देगी? प्लेन की तरफ पहुंचाएगी। प्लेन में आप बैठेंगे, बेल्ट आदि बांधेंगे और प्लेन टेक ऑफ करे। पहले वो बहुत दूरी तक चलता जाएगा, अंदर अंदर, माना रंगीली दुनिया से अपोजिट दिशा में अंदर की ओर जा रहा है। समझ में आ रही बात? और स्पीड में जाता जाएगा, जाता जाएगा, जाता जाएगा, ताकि पहले वो स्पीड पकड़े। और जब स्पीड पकड़ लेगा फिर टेक ऑफ होगा, अर्थात फिर धरती को छोड़ेगा। और जब धरती को छोड़ेगा तो धीरे 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 हाइट पे जाएगा। फिर वो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के बाद वहां फ्लोट करेगा, मींस उसी हाइट पे रह के आगे आगे मूव करेगा। और देखेगा भी मंजिल पास में है तो वापस नीचे की ओर, जिस हाइट पर पहुंच गया था अब उस हाइट से उसने क्या करना है? नीचे 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 आके फिर लैंडिंग करेगा। फिर लैंडिंग के बाद फिर सीधा, पहले तो रंगीली दुनिया से दूर गया था, अब रंगीली दुनिया के पास आ रहा है। और वापस हम बोर्डिंग गेट पे आके बोर्डिंग एरिया क्रॉस करते हुए वो बेल्ट से अपना लगेज उठाते हुए बाहर की दुनिया में आ जाते हैं। सो दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड कि राजयोग में हम करते क्या है। बाहर की दुनिया इंद्रियों के माध्यम से हम अटैच है, इससे अटैच, ये टर्मिनल है, ये टर्मिनल है। और इस टर्मिनल से हम सब कुछ क्रॉस करते हुए बोर्डिंग गेट के तरफ जाना है हमें। और बोर्डिंग गेट तक जाने के बाद प्लेन तक जाना है। तो इसी को कहा गया, जो कल बताए थे ना हमने, क्या क्या बंधन है हमारे को? देह का बंधन है, देह के संबंधियों का बंधन है, कर्म का बंधन है और कर्म फल का बंधन है। तो मैं यहां से अपने आप को डिटैच कर भी लूंगी ना सपोज, और भीतर जाऊंगी भी ना, तो भीतर और प्रकार के ख्याल चलेंगे ना। मेरे जीवन में जो घटनाएं घट रही है, होगा या नहीं होगा, भले मैं आंख से बाहर का नहीं देख रही हूं, भले मैं कान से बाहर का नहीं सुन रही हूं, मैंने यहां से डिटैच करके अंदर तो ले गई, लेकिन अंदर अभी मेरे जीवन में कोई यश अपयश जैसी स्थिति बनी है, हानि लाभ जैसी कोई स्थिति बनी है, जो जितने कल सारी बातें बताई हमने, वो कोई ना कोई बात सामने आ जाएगी, आएगी या नहीं आएगी, उनसे भी डिटैच। तो ऐसे भी शिवदा अंदर गए और उड़ गए ऊपर भगवान के पास, डिटैच। जब तक डिटैचमेंट नहीं होगी, अटैचमेंट अपने सत्य स्वरूप से नहीं होगी। और इसीलिए तो मंदिर में ये प्रथा बनाई गई कि मंदिर में जिस भगवान की पूजा करने आ रहे हैं आप, पहले जूता चप्पल बाहर छोड़ो। और जूता चप्पल माना चमड़ा, क्योंकि पहले तो जूते चप्पल चमड़े के होते थे, तो चमड़े की वस्तुएं बाहर। और वो क्या बोलना चाहते थे वास्तव में? रिचुअल्स कुछ सूक्ष्म बातों की ओर इशारा करने के लिए होते हैं। वो इशारा कर रहे थे कि ये भी चमड़ी है, ये देह क्या है? चमड़ी है। तो चमड़ी से रिलेटेड हर प्रकार की स्मृति से अपने आप को पहले डिटैच करो। फिर वो देह से रिलेटेड भी थॉट हो सकते हैं, देह के संबंधियों से रिलेटेड भी थॉट हो सकते हैं, इन देह से जो हम कर्म करते उससे रिलेटेड भी थॉट हो सकते हैं, और कर्म के कारण जो मेरे सामने बातें आई है उससे रिलेटेड भी थॉट हो सकते हैं। और इसलिए सिर्फ ये नहीं कहा कि जूता चप्पल चमड़े का, हर वस्तु जो आपकी चमड़े की उसको बाहर रखो, यही कहा ना। इसने कहा सिर्फ देह से डिटैच नहीं, देह से संबंधित हर चीज का आपको क्या करना है, अपने आप से अलग करना है, डिटैच होना है। और फिर डिटैच होने के बाद उसमें फिर क्या बोला उन्होंने, अंदर जाके सोचने की बात है। जिस भगवान की पूजा करने के लिए मैं मंदिर में प्रवेश कर रहा हूं, जहां मूर्ति विराजमान है, डेफिनेटली मैं उसकी पूजा करने आया हूं, मतलब वो मेरे से ऊंचे हैं, मेरे से महान है, मेरे से ग्रेट है, मेरे से ज्यादा पूज्य है, इसलिए तो मैं उनकी पूजा करने आई हूं। लेकिन होता क्या है, चप्पल जूते या चमड़े की हर वस्तु बाहर निकालने के बाद पूजा से पहले क्या होता है पता है, तिलक लगाने की विधि होती है, आती है। और उसमें भी तिलक किस किस को लगता है, खुद को, पूजा करने वाले को, और जिसकी पूजा आपने करनी है उसको भी। इन दोनों में से पहले किसको तिलक लगाने का विधान है, स्वयं को, सोचने की बात है। लोकाचार में भी, लोक व्यवहार में भी, सपोज आपको भी प्यास लगी है, मुझे भी प्यास लगी है, हम दोनों पास पास खड़े समझो, और दोनों को प्यास लगी है, दो ग्लास आए मेरे हाथ में दिए गए, आप मेरे से बड़े हैं, पर प्यास मुझे भी लगी है, लेकिन बड़े होने के नाते मुझे पहला ग्लास किसकी तरफ बढ़ाना चाहिए, सामने वाले की तरफ। और अगर मैं ऐसा नहीं करती हूं, पहले पी लेती हूं बाद में देती हूं, लोग कहेंगे देखो इसको लोक व्यवहार की भी अक्कल नहीं है, बड़े छोटे का उसको कुछ समझ में ही नहीं आता है, कहेंगे या नहीं कहेंगे। मैं करने को तो कर दूं, पर फिर ऐसे कमेंट भी आएंगे कि इसको अक्कल नाम की चीज नहीं है, छोटे बड़े का इसको कुछ समझ नहीं है। अब ये बात वहां पे क्यों नहीं लागू हो रही है कि मंदिर में जो मूर्ति विराजमान है, बेशक वो मेरे से ऊंचे हैं, तभी तो मैं उनकी आरती करने आई, पूजा करने, तो टीका तो पहले उसको लगना चाहिए ना, जो बड़े हैं उनको पहले लगना चाहिए ना। पर नहीं, विधान है पहले खुद को लगाओ और पीछे उसको। इसमें भी बहुत बड़ा रहस्य है कि का जूते चप्पल, देह और देह से रिलेटेड हर वस्तु, व्यक्ति, वैभव से अपने आप को डिटैच, लेकिन कैसे करेंगे, तो कहा आत्मा पर टिक जाओ। ये था तिलक लगाना, ये था टीका लगाना, क्योंकि जिसकी पूजा करने आए हो, पूजा करने वाला कौन है, देह, देह करेगी पूजा नहीं, आत्मा ने, आत्मा ने कनेक्शन जोड़ना है ना उसके साथ, और जिसने कनेक्शन जोड़ना है पहले उस पर तो ध्यान टिका लो। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान उस पर रहता नहीं, हमारा ध्यान तो इधर रहता है। और इसलिए प्रथा बनी कि पहले चमड़े की वस्तुएं बाहर उतारो और अंदर पूजा विधि आरंभ करने से पहले खुद को टीका लगाओ। और इधर टीका लगावाना अब आत्मचिंतन आरंभ करो, और इसीलिए आत्मा का ज्ञान दिया, पहले आत्मा का ज्ञान दिया कि क्या चिंतन करूं, तो पांच बातें बताई आत्मा के परिचय की, नाम क्या है, रूप क्या है, एड्रेस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, प्रोफेशन क्या है। वैसे भी आप मंदिर में जाओ तो कैसे जाएंगे, रात को सोए थे, सुबह उठ गए, बिना नहाए धोए ऐसे ही उन्हीं वस्त्रों में मंदिर में जाके पूजा करोगे क्या? क्या विधान है, स्नान आदि कर लो, अपने आप को स्वच्छ कर लो, पहले पूर्ण स्वच्छता के साथ, पवित्रता के साथ उसके पास जाना होता है। आवाज नहीं आ रही है? आवाज की प्रॉब्लम है, ठीक है ना? तो हम क्या बता रहे थे कि खुद को स्वच्छ कर लेना होता है, खुद को ताजगी से भर लेना होता है, फिर पूजा करनी होती है। तो आत्मचिंतन करना माना खुद को स्वच्छ कर रहे हैं हम। जो भी थोड़ी बहुत देह से संबंधित बातें हैं उससे डिटैच होने का तरीका आत्मा से संबंधित चिंतन आरंभ। मैं कौन हूं? ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा के रूप में देखूंगी, माना नहा रही हूं ना, अन्यथा तो वो दिख नहीं रही, मुझे यही दिख रहा है। समझ में आ रही बात? ये क्लीनिंग हो रही है, अपने आप को पहले नहलाया जा रहा है। और नहा धो के क्या करते, इत्र लगाते हैं, लगाते हैं ना इत्र, तो मेरे जो गुण है उस गुण रूपी इत्र को फैलाओ। अभी मैं सिर्फ आत्मा ज्योति स्वरूप नहीं हूं, ज्योति स्वरूप तो मैंने अपने स्वरूप को चमका दिया, अब इत्र लगानी पड़ेगी ना। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं, मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूं। ऐसे मैं इत्र लगा रही, छिड़क रही हूं, खुद भी अनुभव कर रही हूं वाइब्रेशन शांति प्रेम के, और चारों ओर फैला रही हूं। और फिर उधर टीका लगा रहे हैं। अब वहां पर भी देह को नहीं देखो, किसको देखो? आत्मा को देखो। इसलिए कहा उधर भी टीका लगाओ, तो उधर जो है फिर उसका चिंतन आरंभ, उसका चिंतन आरंभ करके। तो यहां हमारे पास उधर कौन है? इधर आत्मा है, उधर कौन है? परमात्मा है। अब परमात्मा का चिंतन आरंभ करो, और परमात्मा का चिंतन करते करते उसकी रश्मियों को भी अपने भीतर भरते भरते आपको ही नहीं पता चलेगा कब कनेक्शन एस्टैब्लिश हो गया, आपको ही नहीं पता चलेगा। हम क्या करते, टीका लगाया इधर, टीका लगाया उधर, उठाई आरती की थाली और आरती करने लगे। क्या होती है आरती? जिसकी आरती कर रहे हैं उसकी महिमा होती है, उसकी महिमा होती है। तो यहां पर भी जिस परमात्मा से मैं कनेक्ट होने जा रही हूं, उसके स्वरूप को दर्शन कर रही हूं, टीका लगा रही हूं, जो मेरे गुण है उसको भी उस रूप में देख रही हूं कि मेरे पिता, मैं शांत स्वरूप, मेरे पिता शांति के सागर है, और उसकी खूब महिमा करती जाती हूं। तो मेरा मन बुद्धि उस पर टिक जाता है। तो जब तार के दोनों छोर प्रॉपरली कनेक्ट हो गए, तो वहां से पावर आपके पास आएगी या नहीं आएगी, आएगी या नहीं आएगी, बस आपको पता भी नहीं चलेगा। बस आप इस प्यार भरी वार्तालाप में लगे हुए थे, और आपके अंदर वो पावर, जैसे हम सूर्य के सामने बाहर नहीं, सर्दी के दिनों में बाहर बैठ जाते हैं, हम ये थोड़ी सोच रहे होते कि सूर्य की किरण मेरे पास आ रही है, आ रही है, आ रही है, ऐसे सोचते हैं क्या? लेकिन इतना जरूर करते हैं कि जिस तरफ सूर्य की किरणें उस तरफ बैठ जाते हैं जरूर, जहां सूर्य की किरणें न हो उस तरफ बैठ जाए, और सोचे कि सूर्य का सेक मिले वो नहीं हो सकता है। लेकिन जिस तरफ सूर्य का सेक आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, उष्मा आ रही है, उस तरफ में बैठ जाऊं, अब बोलने की भी जरूरत नहीं होगी मुझे कि सूर्य की किरण मेरे पास आ रही है और मेरे को आके गर्मी दे रही है, मेरे शरीर में जाके विटामिन डी क्रिएट कर रही, बोलना पड़ता है क्या? जबकि हमको मालूम है कि विटामिन डी सूर्य प्रकाश से ही मिलता है, पर बोलने की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ सूर्याभिमुख हो जाना पड़ता है। इसीलिए तो सूर्य नमस्कार का प्रावधान रखा गया, क्योंकि विटामिन डी उसके बिना नहीं मिलता है, बाकी विटामिन कहीं कहीं से मिल जाएंगे पर वो नहीं मिलेगा, तो उसका भी प्रावधान रखा गया। तो कहने का तात्पर्य तात्पर्य उस तरफ उस सन्मुख हो जाओ उसके जहां से आपको प्राप्ति करनी है। फिर आप ना भी बोलो ना कि मेरे पास आ रही है या मुझे दो, वो आएगी आएगी आपके पास। आपको मांगने की जरूरत नहीं कि परमात्मा आप मुझे अपनी शांति दो, प्रेम दो, वो आ रहा है ना, वो ऑटोमेटिकली आ रहा है। पावर हाउस का काम है सप्लाई करते रहना, और कहाँ सप्लाई जाएगा, जो कनेक्टेड है उसके पास जाएगा सप्लाई। तो मैं मन बुद्धि उसको टिका ही, मन मैं कनेक्टेड हूं तो सप्लाई उसका मेरे पास आएगा और मैं भरपूर हो जाऊंगी। तो हम आपको विमान का एग्जाम्पल दे रहे थे, एयरपोर्ट का। तो हमने क्या बोला कि पहले तो टर्मिनल, रंगीली दुनिया, बोर्डिंग एरिया, फिर वहां से निकलकर प्लेन में बैठ गए। प्लेन क्या करेगा, पहले अंदर अंदर चलता जाएगा, सीधा धरती पर ही चल रहा है अभी, स्पीड पकड़ेगा और स्पीड पकड़ के टेक ऑफ करेगा। ऐसे हमें भी क्या करना है, बाहर की दुनिया से डिटैच, अंतरात्मा में फोकस। लेकिन एक बार में आत्मा ज्योति स्वरूप बोलने से स्पीड नहीं पकड़ेगी, स्पीड नहीं पकड़ेगी। तो बहुत गहराई से अपने आप को पूर्ण विश्वास के साथ चंद मिनटों तक ये चिंतन देते जाओ। ये है कि विमान चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अभी भूमि पर ही है लेकिन चलता जा रहा है। मैं भी इसी शरीर में ही हूं, शरीर के भीतर ही हूं, लेकिन आत्म चिंतन करके भीतर भीतर पहुंचती जा रही हूं। क्योंकि और ख्यालात होते हैं ना अंदर में, तो उन ख्यालों से बचने के लिए मैं इधर चलती जा रही हूं। मैं आत्मा हूं, ज्योति स्वरूप हूं, शांत स्वरूप हूं, शांति मेरा निजी धर्म है, मुझसे शांति के वाइब्रेशन निकल रहे हैं, मैं अनुभव करती हूं, चारों ओर फैलते हैं। ऐसी अच्छी स्पीड पकड़ लो। कहा ना, नहा धो के इत्र लगा के जाते हैं, अपने आप को अच्छी से सजा लो, चेहरे को बिल्कुल साफ प्रकाशित करो। ये चेहरे को चमकाते हैं ना, ये वाला चेहरा नहीं, अंदर वाला, आत्मा को चमकाओ, एकदम प्रकाशित स्वरूप में देखो, प्योर पवित्र दिव्य आभा उसकी फैल रही है और उसमें से खुशबू भी निकल रही है। और वो जब स्पीड पकड़ जाए, टेक ऑफ करो, आत्मा यहां से ऊपर उड़े। टेक ऑफ करेगा ना, धरती को छोड़ेगा ना, ये धरती है ना, माटी का पुतला बोलते ना इसको, तो अभी तक इस धरती पर ही चल रही थी मैं अंदर, और इस माटी के पुतले को, इस धरती को मैंने छोड़ा और यहां से निकली ऊपर ऊपर। जैसे वो भी धीरे 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 ऊपर जा रहा है, मैं भी यहां से उड़ती हुई कहां जा रही हूं, ऊपर, नीले आसमान के ऊपर। क्योंकि नीले आसमान तक तो भौतिक दुनिया है ना, मुझे तो भौतिकता से परे जाना है, नीले आसमान को क्रॉस कर रही हूं मैं, उसके बाद अपनी सूक्ष्म लोक को भी क्रॉस कर रही हूं, और उसके बाद मेरी वो फ्लाइट क्या करता है, अपनी मैक्सिमम हाइट तक चला जाता है। मेरी मैक्सिमम हाइट है परम धाम, कि जिस परम धाम में चारों तरफ सुनहरा लाल रंग का प्रकाश है और शांति ही शांति है। उस डीप साइलेंस की अनुभूति को करें और देखें, सामने मेरे परम पिता भी है। उसी के लिए तो आई हूं मैं इधर उड़ान भर के। फिर उस परम ज्योति को देखें। अब मन बुद्धि को क्या कर रही हूं मैं, उस परम ज्योति पर टिका रही हूं, तो चिंतन भी कर रही हूं और चिंतन के अनुसार विजुअलाइजेशन कर रही हूं कि सामने मेरे परम पिता शिव बाबा ज्योति स्वरूप, कितना सुंदर मनोहारी छवि, कैसी उनकी किरणें चारों तरफ फैल रही, मेरे तरफ आ रही है, शांति के सागर है, शांति के वाइब्रेशन भी आ रहे हैं। और ये आप करते करते प्यार से करना है ये सब। कैसे करना है? प्यार से करना है। और प्यार में क्या होता है? थोड़ी देर वार्तालाप करते फिर खो जाते हैं। ऐसा ही होता है प्यार में। आप देखो, जब कभी किसी नए नवेले की सगाई होती है ना, जब लड़के लड़की की सगाई का पीरियड 3-4 घंटे या एक दिन पकड़ लो, फिर तो अपने अपने स्थान पर लौटना है। लेकिन दोनों ने अपने अंतर मन में छवि को, अपने वार्तालाप को इतना गहरा अंकित कर लिया है, अलग तो हो गए हैं लेकिन ख्यालों में उसी के डूबे हैं। चुपचाप भी है लेकिन डूबे हुए हैं। कोई खास चिंतन करके नहीं कर रहा है कि कितनी खूबसूरत थी, बस वो सामने सामने स्वरूप आ जाता है और खो जाता है। तो ऐसे चिंतन करते हुए आपको क्या करना है? डीप साइलेंस में चले जाना है। हम क्या करते हैं? बैटरी को जोड़ के देखते हैं कि साइन आ गया कि करंट आ रहा है, फिर छोड़ देते कि नहीं छोड़ देते हैं कि उठा लेते हैं? छोड़ देते हैं कि पावर को आने दो। तो यहां पे डीप साइलेंस में चले जाओ। और डीप साइलेंस में चले जाएंगे, जितनी देर आपका डीप साइलेंस कॉन्सेंट्रेटेड माइंड एंड इंटेलेक्ट उस पे कॉन्सेंट्रेटेड है, तो परमात्मा की वो बीम, वो किरण, एक लेस, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड है ना, तो लेसर बीम का रूप लेके आपके अंदर ऐसे प्रवेश करेगी और प्रवेश करके आपका ऑपरेशन कर देगी। और ऑपरेशन करेगी माना, हार्ट की सर्जरी जब करते तो क्या करते हैं? अंदर कचरे को, नली को साफ करते हैं ना। ब्लॉकेज हो गया था ना, तो ब्लॉकेज को साफ करेंगे ना। वो लेजर बीम आपके अंदर जो निगेटिविटी की ब्लॉकेज है उसका सफाया कर देंगे। कल हम बोल रहे थे ना, विज्ञान के पास साधन है ब्लॉकेज निकालने के। यहां तक कि आई ऑपरेशन, लेजर बीम से कई ऑपरेशन होने लगे हैं आजकल। तो आंख का जो ऑपरेशन होता है, हमारी दीदी शीलू दीदी ने भी कराया था, कहते हैं 10 मिनट भी नहीं लगा ऑपरेशन में, शॉर्ट ड्यूरेशन में मैक्सिमम 8 मिनट। और उस मैक्सिमम 8 मिनट में ऑपरेशन कब हो गया पेशेंट को पता भी नहीं चलता है, पेशेंट को पता भी नहीं चलता है। लेकिन हाँ, पेशेंट को अपने आप को डॉक्टर के हवाले जरूर करना पड़ता है। और डॉक्टर के हवाले करके डॉक्टर जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसका पालन करता है। और ये जब आई का ऑपरेशन लेजर बीम से होता है तो डॉक्टर क्या देता है उसको इंस्ट्रक्शन, कि आपको है ना आंखों को एकाग्र रखना है, ये इंस्ट्रक्शन जरूर देता है। और उसकी आंखें जब वो एकाग्र रखता है पेशेंट, वो जो भी उसने जो भी विधि सीखी है उस विधि के अनुसार लेजर बीम पावरफुल उस पे पास कराता है। और वो जो कचरा जिस कारण से धुंधलापन था आंखों में, वो कचरा ब्लो आउट हो जाता है, निकल जाता है। थोड़ा फ्लिकरिंग थोड़ा सा होता है, इससे ज्यादा कुछ मरीज को पता ही नहीं चलता है। और इतने में डॉक्टर कहता उठ जाओ, पेशेंट कहते मुझे कुछ पता ही नहीं चला क्या हुआ, आई ऑपरेशन हो गया। अब पेशेंट को तो पता नहीं चला, लेकिन कैसे माने कि डॉक्टर ने जो ऑपरेशन किया है वो सफल ऑपरेशन हुआ है? कैसे मानेंगे बोलो? कि बाद में वो पेशेंट जो भी अंतराल होगा कि इतने दिन तक ड्रॉप्स डालूं, वो महसूस करेगा कि मेरी आंखों की रोशनी बढ़ गई है। पहले जो बीच बीच में धुंधला धुंधला आता था, वो नहीं है ऑपरेशन सक्सेसफुल होने की गारंटी। इसी के लिए तो गए थे ऑपरेशन कराने, वरना क्या शौक पड़ा था मुझे इतना पैसा खर्च करके उसके पास जाने की। यहां पर भी आप जब जाएंगे उसके पास, उसको भी टीका लगाएंगे, माना उसको भी कनेक्ट करेंगे। यहां टीका लगा के गए उसके पास, फिर उसको टीका लगाएंगे और फिर उसके प्यार में खो जाओ। साइलेंस के पल, कि जिस साइलेंस के पलों में वो लेजर बीम परमात्मा की आप आत्मा पर ऐसा काम करेगी आपको पता भी नहीं चलेगा। उस समय बस आपको थोड़ा सा फिर उस साइलेंस से जब बाहर आएंगे हल्का लग रहा है, निश्चिंत बना लग रहा है, सुकून महसूस हो रहा है। और उसके बाद उस पिता परमात्मा का शुक्रिया करते हुए फिर से एक बार उस सुंदर छवि का दर्शन करते हुए, ताकि वो सुंदर छवि मेरे अंतर मन में गहरी गहरी छप जाए। ऐसा करते हुए और ऐसे समझते हुए कि मेरे पिता मेरे बाबा मेरे साथ साथ हैं, अब लैंडिंग की ओर बढ़े। ये टेक ऑफ किया था, ऊपर ऊपर गए थे, फिर एक मैक्सिमम हाइट पर फिर उसी में चढ़े थे। ये मैक्सिमम हाइट परमधाम में जाके वहीं रुक गए, वहीं वार्तालाप किया, माना वहीं चल रहे हैं हम। और वो उससे जिसके लिए विमान की फ्लाइट कर, क्यों हमने, मुझे किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचना था इसलिए तो हम फ्लाइट में गए थे। तो हम क्यों गए थे परमधाम? उस पिता की शक्तियों को भरने, कि जिन शक्तियों से मेरी बैटरी चार्ज भी हो, और जैसे चार्ज होगी तो नेगेटिविटी हार्मफुल रेडिएशन तो कम हो ही जाता है ना, वो भर के वापस में नीचे उतर रही हूँ, नीचे उतर रही हूँ। और नीचे उतर के लैंडिंग किया, माना इस शरीर में आ गई, इस भ्रुकुटी में आके बैठ गई। लेकिन लैंडिंग करते रुक नहीं जाता, लैंडिंग करके फिर उसको चलना है अभी, तो लैंडिंग करके फिर से मैं अपने आप को चिंतन देती हूँ। अब कौन से चिंतन देती हूँ? ये जो परमात्मा मिलन की मैं सुंदर अनुभूति करके आई हूँ, एक हल्केपन का, एक निश्चिंत पने का जो मैंने सुकून अनुभव किया है परमात्मा के सानिध्य में बैठकर, उसकी शांति और प्रेम के वाइब्रेशन से जो मैं भरपूर हुई हूँ, अब कर्म क्षेत्र में कर्म करते हुए उसी पिता की भी स्मृति बनी रहेगी कि वो करण करावनहार मुझसे करा रहा है, और जो जिससे मुझे भरा है वो मेरे हर कर्म में मैं उसको अभिव्यक्त कर रही हूँ। अपने हर कर्म में, अपने हर सोच में, अपने हर बोल में उस प्रेम को, उस शांति को, उस खुशी को अभिव्यक्त कर रही हूँ। और ऐसे चिंतन के साथ मैं कौन सी एरिया में आ जाती हूँ? बोर्डिंग गेट की तरफ आ जाती हूँ। बोर्डिंग एरिया क्रॉस करते हुए, लगेज उठाते हुए, बेल्ट की तरफ लगेज उठाया, बाहर की दुनिया में आ गए। ऐसा ही होता है ना? समझ में आ गया? क्लियर? क्लियर हुआ? कितना सिंपल है। और हमारे परमात्मा शिव बाबा कहते, आजकल बहुत इजी हो गया है कि जो बाबा कह रहे हैं उसको समझना, क्योंकि टेक्नोलॉजी सामने है। जस्ट कंपेयर विथ इट एंड यू कम टू नो व्हाट इट इज। आ गया ना समझ में? तो अब जो कहा कि उस पेशेंट ने कहा कि अब मेरी रोशनी बढ़ती जा रही है, मेरा धुंधलापन कम होता जा रहा है, तो मेरा ये चार्जिंग सचमुच सफलता या नहीं वो कहाँ से पता चलेगा? जब कर्म क्षेत्र में, क्योंकि वहां पर भी आई ऑपरेशन होने के बाद बिल्कुल छूट नहीं जाते, अभी आई ड्रॉप्स डालने पड़ते हैं। तो ऐसे नहीं कि मैं उसे करके आई एक बार हो गया, डेली अभ्यास करना है, डेली ड्रॉप डालने पड़ेंगे ना आपको सुबह और शाम। एक एक घंटे के अंतराल में भी कई बार होता है, शुरू शुरू में हर एक घंटे में डाले जाते हैं पूरा एक महीना तक। हमें इसलिए अनुभव है क्योंकि हमारी दीदी करा के आई थी। तो हम ये सब ऐसे एग्जाम्पलों से भी हम ट्राई करते हैं कि एक्चुअली मेडिटेशन में भी क्या होता है। तो हमें भी हर घंटे एक एक मिनट के लिए भी कम से कम भीतर चले जाएं, उसके पास चले जाएं और फिर कर्म क्षेत्र में आ जाएं और सुबह शाम और ज्यादा न सही 15-15 मिनट और सुबह में जब उठते हैं तब, जब बिस्तर पे सोने जाते हैं उससे पहले, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होते हैं व्हेन यू आर गेटिंग अप एंड व्हेन यू आर गोइंग टू स्लीप, वो बहुत इंपॉर्टेंट टाइम होते हैं। सुबह जब आप गेटअप हुए उठे हैं वो आपके पूरे दिन का फाउंडेशन है। फाउंडेशन में जिस प्रकार का पत्थर होगा उस प्रकार की इमारत खड़ी होगी। और इसीलिए कहते हैं उठे तब ही अभ्यास कर ले, और रात्रि में भी जिस प्रकार का चिंतन करके सोएंगे सुबह उठते ही वही पहले याद आएगा। पहले के जमाने में दादा दादियां बच्चों को कहानी सुनाकर सुलाते थे तो सुबह उठ के वही कहानियां बोलते थे। आज के जमाने में रिमोट हाथ में है, टीवी सामने है, वो तू तू मैं वाले सीरियल देख रहे हैं, फाइटिंग हो रही है, एक दूसरे पर शक हो रहा है, डाउट हो रहे हैं और ऐसे सीरियल देख देख के सो जाते हैं। सुबह वही हमारे मनों में भरा होता है, प्रैक्टिकल में भी वही हो जाता है, होता है नहीं होता है। इसलिए सोने से पहले वाला समय और उठने के तुरंत बाद वाला समय बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसलिए उस समय अभ्यास अगर कर ले, कहां से कहां तक का, टर्मिनल से बैक टू टर्मिनल तक का, समझ में आया ना, ये लंबा सफर पूरा करेंगे और फिर एक एक मिनट दिन भर में, एक एक घंटे में, तो ये एक एक ड्रॉप डालने जैसा हो जाएगा। और कुछ दिन में आप पाएंगे, क्या पाएंगे, अब तक मैंने कई बातें पकड़ी हुई थी जो कहती थी मैं ये बात भूल नहीं सकती, उसने मेरे साथ किया ही ऐसा है, मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, और पकड़ पकड़ के अपने अंदर क्या कर रही हूं, नेगेटिविटी बढ़ा रही हूं। लेकिन ये अगर सक्सेसफुल होगा ना, उसकी रिजल्ट ये आएगी कि अब धीरे धीरे मन कहेगा क्या फालतू चीजें पकड़ के बैठी हूं मैं, छोड़ो, जो ऐसे करके बैठी हूं ऐसे जब छूटने लग जाए समझो मेरा मेडिटेशन सफल हो रहा है। कुछ परिस्थितियां जो जीवन में आए दिन आती रहती थी अभी भी आ रही, पर इस मेडिटेशन के अभ्यास से मैं ऐसी परिस्थितियों में फटाफट इरिटेट होती थी, फटाफट गुस्से में आ जाती थी, लेकिन अब मैं देख रही हूं इतना जल्दी इरिटेशन नहीं आ रहा है। समझना मैं मेरा ऑपरेशन परमात्मा ने सफलता से किया है। जब समझ में ये महसूस होने लगे कि पहले मैं सोचती थी मैं इसको कभी माफ नहीं करूंगी, इसने किया ही ऐसा है, अब लगता है माफ कर दो ना, मैं क्यों मांगू उससे माफी, अब लगता है मांग लो ना माफी, हारमनी बना के चलना है। यही तो जीवन की सुंदरता है, इसी से तो जीवन ब्लिसफुल बनेगा। आज अगर हमारा जीवन ब्लिसफुल नहीं है उसका बहुत बड़ा कारण एक बात घटना घटी नहीं पकड़ के बैठे हैं, घटना घटी नहीं ऐसी नफरत मैं इसको कभी माफ नहीं करूंगी, घटना घटी नहीं मैं क्यों माफ करूं, बड़ी मैं वो आवे ना, नहीं कहीं हमें माफ करना है, कहीं हमें माफी लेना है, छोड़ना है, छोड़ो तो छूटो। एक पंछी डाल पर अपने पांव की मजबूती से डाल को पकड़ता है और बैठता है और ऊपर नजर डालता है, अरे मेरे जैसे पंछी आसमान में स्वच्छंदता से विचरण कर रहे हैं और मैं यहां बैठा हूं, तो तेरे को किसने बांधा है, तूने खुद नहीं तो बांध के रखा है, तो पैरों की पकड़ छोड़ और उड़, किसने तेरे को मना किया है? तो हमने अपने आप को बांधा हुआ है, पकड़ के रखेंगे बात को, मैं कभी नहीं भूलूंगी, मैं 7 जन्मों तक भी नहीं माफ करूंगी, किया ही उसने ऐसा है। तो फिर ये पकड़ के बैठेंगे तो आत्मचिंतन जो पहली स्टेप है इन सब बातों से डिटेच, यही मैं बोल रही थी कि देह, देह के संबंधी कर्म, कर्मफल, यही सारी बातें आएंगी ना, और कौन सी बातें आएगी? अंदर जाएंगे तो इन्हीं में से कोई बातें याद आई होगी, पर उससे भी डिटैच, उससे भी डिटैच, आत्मा के करीब करीब जाना है। इसलिए जहां एयर प्लेन है उसके करीब जाना नहीं, गेट एरिया तक जा जाके उधर ही जा, रंगीली दुनिया से तो कट ऑफ हो रहे ना। तो जब तक रंगीली दुनिया से इस देह और देह से संबंधित कर्म, कर्म से संबंधित बातों से अपने आप को डिटैच नहीं करेंगे, घंटों बैठे रहो योग करने, रिजल्ट नहीं आएगी। और फिर कहेंगे बहन जी मैं योग करती हूं पर मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा है, चेक कर लेना एक बार, मैं योग करती हूं कितना मैं डिटैच होके करती हूं। आपको देख मालूम होना चाहिए आम व्हीकल्स जो सड़कों पर चलते हैं उसके पेट्रोल में थोड़ी बहुत मिलावट होगी तो भी गाड़ी चल लेगी, लेकिन फ्लाइट एरोप्लेन जिसने ऊपर उड़ान भरना है उसका पेट्रोल रिफाइंड चाहिए होता है, उसमें थोड़ी भी मिलावट नहीं चाहिए होती। हमें भी तो ऊपर उड़ान भरनी है, इसलिए हमारी बुद्धि में, हमारी बुद्धि टोटली डिवाइन रिफाइन होनी चाहिए। और डिवाइन और रिफाइन मतलब ये जो परमात्मा का ज्ञान है ये इतना अच्छी से अंदर में भरा हो कि जीवन की कोई घटना हुई भी हो मेरे साथ, लेकिन इस ज्ञान के जरिए से मैं इधर उधर उंगली नहीं डालकर, ब्लेम नहीं डालकर, मेरा ही कोई दोष था, मेरा ही कोई कार्मिक अकाउंट था, ऐसा सोच के अपने आप को निगेटिविटी से सेफ रखें। वरना इंटेलेक्ट डिवाइन नहीं होगी, इंटेलेक्ट रिफाइन नहीं होगी। बीच बीच में यही तो बातें याद आती है, आप जब भी याद करो भगवान को क्या होता है, एक पल भगवान का चिंतन, दूसरे पल जीवन की घटना का चिंतन, एक पल भगवान का चिंतन, अगले पल घर के संबंधियों ने जो कुछ व्यवहार किया उसका चिंतन। तो आपकी चढ़ाई तो हो ही नहीं रही है, भगवान के पास तो आप जा ही नहीं रहे हो, और ऐसे करते करते आप देखेंगे भगवान का चिंतन ही नहीं रहेगा, पूरा चिंतन इधर ही का है। और टाइम आधा घंटा बैठे थे पूजा करने, ध्यान लगाने, आधा घंटा हो गया, हो गई मेरी पूजा, चलो उठो काम पे लगो। तो ये जो बताया ना पूरा टर्मिनल टू टर्मिनल, ये चेक करेंगे और ये चेक करते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपका सक्सेसफुल मेडिटेशन होगा ही होगा और उसके रिजल्ट दिखाई पड़ेगी कि अब मुझे छोटी छोटी बातों में इरिटेशन नहीं होता, गुस्सा नहीं आता, थोड़ी थोड़ी बातों में अंदर से टूटती नहीं हूं मैं, थोड़ी थोड़ी बातों में मुझे भय नहीं होता, चिंता नहीं होती, थोड़ी थोड़ी बातें देखकर किसी को आगे बढ़ता हुआ देखकर जो पहले ईर्ष्या होती थी अब नहीं होती, हर कोई अपने भाग्य का खा रहा है, मुझे क्या जरूरत पड़ी है किसी से कंपेयर करने की, मुझे क्या जरूरत पड़ी है किसी को क्रिटिसाइज करने की, यही तो कर रहे होते हम, इसीलिए मेरा पेट्रोल क्या हो जाता है, मिलावट वाला हो जाता है, और मिलावट वाला पेट्रोल फ्लाइट को ऊपर नहीं लेके जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा शुरुआत में जैसे कहा कि बच्चा भी चलता, जब चलना सीखता है, चलता है, गिरता है, संभलता है, चलता है, गिरता है, संभलता है, चलता है, गिरता है, संभलता है, अपने अथक प्रयासों को छोड़ता नहीं है और एक दिन चलने में एक्सपर्ट हम खुद ही अपने जीवन के अनुभवी हैं। चलते हैं ना अच्छे से, चलते हैं कि नहीं चलते हैं? तो ऐसे ही मेडिटेशन के पथ पे भी चलना ऐसा ही हो जाएगा, आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। और आप जब खुद एक्सपर्ट हो जाएंगे, दूसरे को एक्सप्लेन करना इजी कर जाएगा आपके लिए। जब मुझे ही नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिर दूसरे को नहीं बता पा रही हूँ, फिर वो दूसरा कहता है आप ही तो नहीं बता रहे, क्या करते आप मेडिटेशन में, बताओ तो सही, ना करते क्या हो? होता है कि नहीं होता है? लेकिन मेरा खुद का अनुभव होगा तो मैं दूसरे को बता सकूंगी। तो मिरेकल होता है प्रॉपर कनेक्शन का, और प्रॉपर कनेक्शन हो उसके लिए सारी बातें थी। अब देखो सोलार की प्लेटें भी, स्कूल का अगर एग्जाम्पल ले ले, जब स्कूल में सिखाया गया कि सन रेज, सूर्य की किरणें चारों तरफ फैली हुई है, उसमें ताप जरूर है पर इतना ताप नहीं है कि कागज रखा और जल जाए, इतना ताप नहीं है। तो हमको स्कूल में सिखाया गया, बच्चों देखो ये लेंस है, हाँ कॉन्वेक्स लेंस कहो, मैग्नीफाइंग लेंस, चलो हम आपको एक जादू दिखाते हैं बाहर, क्योंकि सूर्य की किरणें तो बाहर मिलेगी ना, बाहर लेके जाएंगे। फिर सूर्य की किरणें जिस दिशा में आ रही हैं वहां पे लेंस को पकड़ेंगे और उन किरणों को फोकल पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट कराएंगे, एकाग्र कराएंगे, और उसके नीचे एक माचिस की तीली कहो, कागज कहो, रख दिया और देखो बच्चों अपने आप जल गया। हो गया जादू? जादू था ये कि साइंस था? साइंस था। ऐसे ही देखो हवा सर्वत्र फैली हुई है, टायर के अंदर हवा ही चाहिए होती है ना, पर अगर टायर की हवा निकल गई और हम कहें है ना चारों तरफ हवा, भर जाएगा क्या? उसमें कॉन्सेंट्रेटेड हवा चाहिए, तो स्पेशल पंप चाहिए होगा जिस पंप की सहायता से कॉन्सेंट्रेटेड हवा उसमें भरी जाएगी, तब आपका टायर काम करेगा, आपकी गाड़ी चलेगी। ठीक ऐसे ही कॉन्सेंट्रेशन इज अ मस्ट फॉर मेडिटेशन, पर वो कॉन्सेंट्रेशन तभी होता है जब इतना सारा आत्मचिंतन का, इसीलिए कह रहे सोल कॉन्शियस का अभ्यास बढ़ाओ। एक बार सोल कॉन्शियस में सफलता मिलेगी तो सुप्रीम सोल के चिंतन में भी सफलता मिलेगी, और इसके प्यार में चिंतन करते करते खो जाएगी, ये होगी मेरी कॉन्सेंट्रेटेड लेवल, और उस कॉन्सेंट्रेटेड लेवल में वो बीम कमाल कर देगी, ऐसा कमाल कि उस समय तो मुझे भी नहीं पता चला कि हो क्या रहा है, क्योंकि मैं तो खो गई हूं ना। देखो रात को भी जब हम बिस्तर पे सोते हैं, अगर गहरी नींद आती है तो ही तो हम सुबह के अनुभव करते हैं, फ्रेश महसूस करते हैं। तो आपको तो पता भी नहीं था गहरी नींद, माना आपको पता भी नहीं, लेकिन आपको गहरी नींद लगी वो कहां से पता चलता है? जब आप अपने आप को बहुत रिफ्रेश महसूस कर रहे हैं। यहां पर भी आपको पता ही नहीं चलेगा, आप तो खो गए हो, लेकिन इस खो जाने में कुछ हुआ है, वो कब पता चलेगा? जब आपको लगेगा मुझे बहुत हल्का लग रहा है, मुझे बहुत निश्चिंतपना महसूस हो रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है, परमात्मा के सिर्फ सानिध्य में बैठी हूं। जैसे यहां इस कैंपस में आके आप अपने घरों की सब चिंताएं भूल गए हो ना, भूले हो कि नहीं भूले हो, तो किसकी कमाल है? इस कैंपस में फैले हुए रूहानियत से भरे वाइब्रेशन की। तो ये भी एक कैंपस इसी दुनिया का हिस्सा है जहां निगेटिविटी भी है चारों तरफ, फिर भी आप यहाँ की पॉजिटिविटी का, रूहानियत का अनुभव कर लेते हो। तो सोचो जो परम धाम जहाँ कोई देह नहीं, देह की दुनिया नहीं, कर्म नहीं, कर्म बंधन नहीं, हर प्रकार से मुक्त है, सिर्फ शांति ही शांति है और परमात्मा की उपस्थिति है, वहाँ के रूहानियत के वाइब्रेशन कैसे होंगे, कितने कॉन्सेंट्रेटेड होंगे। और इसीलिए वहाँ जस्ट उपस्थित होने से ही आपके ऊपर वो वाइब्रेशन काम कर जाते हैं। तो ये है राजयोग मेडिटेशन, नाम दिया था आधार विधि। ये सारी विधि समझ में आ गई। और आधार क्या था? आधार क्या था? आत्मा ही तो आधार है भाई। दो व्यक्ति एक दूसरे को कब याद कर सकते हैं? जब परिचय, बिना परिचय के किसी को याद कर सकते हैं आप? तो एक तो परिचय चाहिए, फिर उसके साथ अगर पारिवारिक संबंध है तो याद आएगा कि नहीं आएगा? फिर उसके साथ अगर प्रीति जुड़ी हुई है, फिर उससे कुछ प्राप्ति हो रही है, तो ये भी मुझे खींचेगा उसकी ओर। मेरी याद क्या हो जाएगी? अपने आप याद की तार जुड़ जाएगी। तो हमने आत्मा का परिचय प्राप्त कर लिया, परमात्मा का परिचय, पहला आधार हमारे सामने क्लियर। फिर हमें संबंध छोड़ना है उसके साथ। कल यही कहा ना, हम क्या कहते हैं उसको? वो हमारे परम पिता है, परम माता पिता है वो। वो हमारे परम शिक्षक है, वो हमारे परम सदगुरु है। इतना ही नहीं, खुदा दोस्त की भी कहानियां प्रचलित है। वो मेरा खुदा जो है, मेरा क्या है? परम मित्र है, परम सखा है। और इतना ही नहीं, साजन सजनी का भी संबंध उसके साथ जोड़ा जाता है। मीरा ने उसको क्या बनाया? गिरधर को अपना साजन बनाया। साजन और सजनी का संबंध जोड़ो उसके साथ। और क्या, वो मात पिता, मैं बच्ची, अब मैं मात पिता, वो बच्चा। समझ में आया? ये मुख्य संबंध है। इन संबंधों से दिन भर में भी चाहे जो कर्म कर रहे हो उसके साथ उसको सब, क्योंकि हमने गाया उसको, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्व मम देव। एक एक की क्या गिनती करूं मैं? जितने भी संबंध होते हैं, सारे संबंध मेरे तेरे साथ। तो भक्ति मार्ग में सिर्फ श्लोक गाने तक, उस मंदिर में उस मूर्ति के सामने तक श्लोक गाया और उस मंदिर की दहलीज से बाहर आए, वो सारे संबंध भूल गए और इधर संबंध तैयार। अब भगवान कहते हैं ऐसा नहीं। अब हर इस दुनिया में, इस रंगमंच पे हर कर्म करते हुए मेरे साथ संबंध जोड़ के, दुनिया में जैसे कोई बात है पिताजी को पहले पूछना है, मम्मी को पहले बताना है, टीचर से ये बात पूछनी है, गुरु के पास जाके इस बात का समाधान लेना है, सखा के पास जाके अपने दिल का हाल बताना है, बच्चे से काम लेना है, साजन सजनी के रिश्ते को निभाना है जैसे करते हैं, वो संबंध इससे निभाओ। उसको साजन बना के शेयर करो, उसको मित्र बना के साथ में लेके चलो। वो मेरा मात पिता है, जो भी कुछ कर रही हूँ उससे गाइडेंस लो कि पापा ये करना है, कैसे करना है, पापा मैं यहाँ जा रहा हूँ, ऐसा कर रहा हूँ, आप भी चलो मेरे साथ। ब्लेसिंग लेके जाते हैं ना घर से, वो सारे संबंध। तो क्या बताया? पहला परिचय, फिर पारिवारिक संबंध, और फिर प्रीति का प्यार से याद करना है, स्वार्थ से नहीं। क्या कहते हैं? बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले ना भीख। हम अभी तक मांग रहे थे उससे, और मांग भी कैसे रहते बताए? बिना मैचिंग के। बिना मैचिंग के मतलब अशांत होकर, हे प्रभु जीवन में बहुत अशांति है, एक खड़ी शांति का अनुभव करा दो, तो इधर फैल रहे हैं अशांति के वाइब्रेशन, और वो तो सदा शांति वाले वाइब्रेशन में। इन दोनों की मैचिंग है, क्या कहता है साइंस? जब दो फ्रिक्वेंसी सेम होती है तब कनेक्ट होती है ना, सेम नहीं हो तो नहीं कनेक्ट होती है। आज देखो रेडियो में डिफरेंट डिफरेंट स्टेशन होते हैं, हर स्टेशन पे अलग अलग प्रोग्राम चालू है। मुझे जिस स्टेशन का प्रोग्राम सुनना है मुझे अपने रेडियो की ट्यूनिंग उसके साथ करती हूँ, तो मुझे प्रोग्राम सुनाई पड़ता है। और अगर मैंने ट्यूनिंग नहीं की इसका मतलब वहाँ प्रोग्राम नहीं आ रहा, ऐसी बात है क्या? वहाँ तब भी आ रहा है पर मैंने ट्यूनिंग नहीं की। ऐसे परमात्मा शांति का सागर, प्यार का सागर, उसमें से वाइब्रेशन सदा सदा सप्लाई हो रहे हैं, लेकिन मुझे उससे कनेक्ट होने के लिए मुझे उसकी जैसी फ्रिक्वेंसी पे आना पड़ेगा। लेकिन भक्ति में क्या किया? मांगा, अशांत होके शांति मांग रहे हैं, मन में घृणा भाव भर के प्रेम मांग रहे हैं, इधर भीतर में टूटे हुए हैं शक्ति मांग रहे हैं, मैचिंग नहीं हो रही है। और इसीलिए जो मांग रहे वो तो मेरा खुद का सद्गुण है ना, शांति मेरा सद्गुण है, प्रेम मेरा सद्गुण है, शक्ति मेरे पास है, आनंद मेरे पास है, मैं उसमें आ जाऊं, चिंतन करके वैसा वाइब्रेट करूं एनर्जी को, मैं उस फ्रिक्वेंसी पे आ गई, अब उसके साथ कनेक्ट होना इजी हो गया। तो क्या हुआ? परिचय, पारिवारिक संबंध, प्रीति और प्राप्ति। तो जैसे कहा ना कि पेशेंट ने कहा हाँ धुंधलापन कम हो रहा है, इसलिए उसका विश्वास बैठता है, और इसलिए जैसे डॉक्टर ने कहा वैसे वैसे डालता जाता है ड्रॉप। तो हमें भी जैसे जैसे प्राप्ति अनुभव होगी, निश्चिंतता, हल्कापन, सुकून, और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने आप को शांत रख पा रहे हैं, प्रेम से डील कर पा रहे हैं, माफ कर पा रहे हैं, माफी ले पा रहे हैं, लेने लेने की आदत से देने देने की आदत पर आ गए हैं, चाहिए चाहिए नहीं, मैं भरपूर हूं, अब मैं देने वाला दाता। जब इस लेवल पे आ जाऊं तो समझना मुझे प्राप्तियां हो रही है। तो ये चार आधार आपको इस ओर खींचे चली जाएगी कि मैं और मेडिटेशन करूं, मैं और मेडिटेशन करूं, ताकि मैं भी भरपूर रहूं और मेरे कांटेक्ट में जो आता जाए, मैं जहां भी जाऊं मेरे से वो वाइब्रेशन फैलते जाए और मेरे स्व परिवर्तन के साथ विश्व परिवर्तन हो जाए। क्लियर? क्लियर? तो चलिए थोड़ा सा अभ्यास कर ले अभी। चलिए, सब तरफ से ध्यान हटाकर अपने मन बुद्धि को मस्तक के बीचों बीच जहां तिलक करते हैं वहां भीतर में चमकती हुई आत्म ज्योति पर केंद्रित करें। मन चिंतन करे, बुद्धि विजुअलाइज करे, मैं आत्मा ज्योति स्वरूप कितना सुंदर दिव्य प्रकाशमान मेरा स्वरूप है, चमकता हुआ, जगमगाता हुआ। और इस सुंदर दिव्य स्वरूप से दिव्य किरणें प्रकाश की चारों ओर फैल रही है। ये प्रकाश श्री भरपूर है। मैं आत्मा सिर्फ प्रकाश का पुंज नहीं हूं, मैं गुणों और शक्तियों का भी पुंज हूं। शांति मेरा स्वधर्म है। मुझ आत्मा से शांति के वाइब्रेशन चौं और फैल रहे हैं। मैं स्वयं इस शांति को अनुभव कर रही हूं। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूं। प्रेम मेरी निजी पूंजी है। मैं प्रेम से भरपूर हूं। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं। मैं जो चाहूं सो कर सकती हूं। बस संकल्प करने की देरी है। मैं जो दृढ़ संकल्प करूं उसको पूरा कर सकती हूं। इतनी मेरे पास शक्ति है। अभी मेरा दृढ़ संकल्प है। मैं आत्मचिंतन करते करते परमात्मा मिलन का अनुभव करना है मुझे, और इसी संकल्प के साथ अपने इस प्रकाश को फैलाते हुए गुणों की खुशबू को बिखेरते हुए अब मैं आत्मा इस भ्रकुटी से निकलती हूँ, टेक ऑफ करती हूँ, उड़ान भरती हूँ ऊपर की ओर। देखें आत्मा झिलमिल प्रकाश फैलाती हुई ऊपर 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 चलती जा रही है, और जाते जाते नीले आसमान को क्रॉस कर लिया, और ऊपर जाते श्वेत प्रकाश वाली दुनिया को भी क्रॉस कर लिया, और अब मैं आत्मा पहुंच गई हूं अपने परम धाम। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश है, शांति ही शांति है, स्वीट साइलेंस। इस स्वीट साइलेंस की गहन अनुभूति में मैं खो जाती हूँ। Yeah, और वो गुणों के वाइब्रेशन उनसे निकलकर मेरी तरफ आते हैं। वो प्रकाश की किरणें, वो शक्ति की किरणें मुझ आत्मा के भीतर भरती जा रही है और मैं इस दृश्य को निहारने का प्यार भरा सुखद अनुभव करती हूँ और इस अनुभूति में खो जाती हूँ। परमात्मा का ये सामिप्य, ये सानिध्य, ये सालोक्य, ये सायुज्य कितना सुकून देता है। मैं कितनी स्वयं को हल्की अनुभव करती हूँ और भरपूर भी। बस पिता की छत्र छाया मिल गई, मुझे और क्या चाहिए। ये परम ज्योति में ही मेरा सदा संसार है। मेरा हर संबंध परम ज्योति के साथ है। मैं सर्व संबंधों को अवश्य निभाऊंगी। पिता की उंगली पकड़कर अवश्य चलूंगी। पिता करण करावन हार को सदा साथ रखूंगी। ऐसी सुंदर भावनाओं के साथ अपने मीठे प्यारे शिव बाबा को ये दिल शुक्रिया करता है। कितना न मैं धन्यवाद करूं हे पिता परमात्मा, मेरे जीवन में आकर आत्मा परमात्मा का परिचय देकर मिलन की विधि सिखाकर इस मिलन की अनुभूति तक आपने पहुंचाया। मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं? धन्यवाद के भाव से भरकर और पिता की सुंदर छवि को निहारते हुए उनके किरणों का वाइब्रेशन का रसपान करते हुए अब मैं आत्मा चलती हूँ वापस नीचे की ओर। अब लैंडिंग का वक्त आ गया है, मुझे नीचे उतरना है। देखें आत्मा भरपूर है, निश्चिंत है, झिलमिल प्रकाश फैलाती हुई नीचे उतर रही है। उतरते उतरते नीले आसमान की दुनिया में आ गई है और उतरते उतरते इस देह में भ्रुकुटी में आकर विराजमान। मैं आत्मा वापस अपनी भौतिक दुनिया में आ गई हूँ। अब मुझे अपनी भौतिक दुनिया में अपने रोल्स, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेवारियां, अपनी भूमिकाएं सब कुछ अदा करना है। लेकिन अब जब मैं ये अदा करूंगी कौन सी स्मृति से कि पिता परमात्मा करण करावन हार है और मैं करण हार, मैं निमित्त हूं और जो कुछ प्रेम और गुणों और शक्तियों की पूंजी मैंने स्वयं में भरी है उसी पूंजी को कर्म क्षेत्र में हर कर्म करते हुए हर व्यवहार करते हुए अभिव्यक्त करूंगी। यही मेरे इस परमात्मा मिलन की अनुभूति का सफल होने का प्रमाण है। ओम शांति शांति।